ख्येयै महात्म्यं तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवति यस्य नैसर्गिकी रतिः। श्लोक संख्या 30 से चालू कर रहे हैं। चौथे 31 तस्य दैत्यपते पुत्रः चत्वारः परमाद्भुतः प्रह्लादो भुर्महांस्तेषां गुणैर्महदुपासकः ब्रह्मण्यः शीलसम्पन्नः सत्यसम्भोजितेन्द्रियः आत्मवत्सर्वभूतानां एकः प्रियः सुहृत्तमः आसवत्सन्नतार्जाङ्घ्रि पितृवद्दीनवत्सलः भातृवत्सदृशे स्निग्धो गुरुश्रीश्वरभावनः विद्यार्थमुखजन्माद्यो मानस्तम्भविवर्जितः नो विज्ञशितो व्यसनेषु निःस्पृहा भूतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तु दृक्
ीरधीरामोरहिताशुरोसुरः
यस्मी महाद्गुणाराजन् गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः न ते धुनापि धीयन्ते यथा भवतीश्वरे यं साधु गाथा सदसि प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किं तान्ये भवाद्दृशः गुणरलं संख्ययै माहात्म्यं तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवते
यस्य नैसर्गिकी रतिः
तस्य उसके दैत्यपतेः दैत्यपति हिरण्यकश्यपु के पुत्रः पुत्रगण चत्वारः चार परमाद्भुतः अतिशय अलौकिक प्रहलादः प्रहलाद महाराज अभूत हुए महान
महान
तेषां उन पुत्रों में गुणैहि विविध गुण द्वारा महदुपासकः महान पुरुषों के उपासक वो यहां तक सुखदेव गोस्वामी श्री नारद मुनि के मुख से हिरण्यकश्यपु की अशुभ वासनाओं का वर्णन किया। भगवान से प्रेम करने के अतिरिक्त संसार के भोगों के प्रति जो लालसा है जीव की, और उस लालसा को पूरा करने के लिए जो प्रयास कार्य किए जाते हैं, ये सब अशुभ है, वासना के प्रसार। यद्यपि हिरण्यकश्यपु बाह्य दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट कार्य किया, बहुत बड़ा तप किया, लेकिन फिर भी तप के पीछे उसका उद्देश्य था अजर अमर अजय होना, अप्रतिद्वंदी, और इस विश्व का एक छत्र सम्राट होना, यह उसका उद्देश्य था। तो बाह्य रूप से देखने में तो बहुत अच्छा कार्य कर रहा था, परंतु उसके हृदय का अभिप्राय अच्छा नहीं था, भोगों की ही वासनाएं मन में बसी रही, तो इसको अशुभ वासना कहते हैं। अब इसके बाद अर्थात हिरण्यकश्यपु के वर्णन के बाद अब प्रहलाद महाराज का वर्णन प्रारंभ किया जा रहा है। प्रहलाद महाराज में शुभ वासना है, भगवान की भक्ति की लालसा है, प्रेम है। तो यहां से नारद चालू कर रहे हैं, तस्य दैत्यपते पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुतः प्रहलादो गुणमहांस्तेषां गुणैर्महदुपासकः। तस्य दैत्यपते है उस हिरण्यकश्यपु के दैत्यराज के परमाद्भुतः चत्वारः पुत्रः आसन, उसके चार पुत्र थे। चार पुत्रों की विशेषता नारद जी बता रहे हैं, परम अद्भुत है। अद्भुत का अर्थ अलौकिक, लोक में जैसे अन्य लोगों के पुत्र होते हैं, देवता में, दानव में या मनुष्यों में, वे वैसे पुत्र नहीं थे, सब तरह से विलक्षण थे, अलौकिक और अतिशय अलौकिक थे, इसलिए परम अद्भुता कह रहे हैं। सब चीज में परम अद्भुत थे, शरीर के सौंदर्य में और साइज में, ज्ञान में, सब कुछ में वे विलक्षण थे, और उनमें भी, उन चारों में भी, तेषां चतुर्णाम, उन चारों में भी प्रहलाद गुण ही महान अभूत। प्रहलाद महाराज अपने विविध गुणों से महान हुए। तो जहां तक परम अद्भुतत्व का वर्णन कर रहे हैं, वह तो हिरण्यकश्यपु के साइड से कर रहे हैं। हिरण्यकश्यपु एक अद्भुत अलौकिक पुरुष था सभी विषयों में, तो उसके पुत्र भी उसी के समान हुए, तो सभी पुत्र विलक्षण थे, परंतु प्रहलाद महाराज अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण उन चारों में बहुत श्रेष्ठ थे, महान है। गुण ही शब्द यहां लिखा गया, गुणों के कारण, या नहीं कि पैतृक इनहेरिटेंस के कारण, पिता की महानता के कारण नहीं, पुत्र अपने व्यक्तिगत गुणों की महानता से, गुणों के कारण महान हुए, गुण ही महान अभूत। उन चारों में वास्तव में पिता क्या करेगा, व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने में व्यक्तिगत गुण अर्जन करे। एक नीतिकार ने कहा है संस्कृत में एक श्लोक में कि अगस्त जी का जन्म घट से हुआ है, घड़ा से, लेकिन वे इतने महान हैं कि समुद्र पी गए, परंतु घड़ा क्या पिएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 लीटर पानी मिलेगा। घड़ा से उत्पन्न होने वाला समुद्र पी गया, लेकिन उसका बाप घड़ा कुछ नहीं कर सकता। 5 लीटर से लेकर 10-15 लीटर तक पानी अटवा सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो क्या करेगा पिता का गुण। वास्तव में किसी भी पुत्र को चाहिए कि वह पिता के संपत्ति को, उसके ज्ञान और उसके स्वभाव को तो ग्रहण करे, परंतु कोशिश करे कि पिता से अधिक धन कमा लें, पिता से अधिक ज्ञान अर्जन कर लें। और इससे पिता का नाम बढ़ता है, पिता हीन नहीं हो जाते हैं। अगर पुत्र है पिता को सरपास करता है, बहुत अधिक वैभव या पांडित्य या यश जो कुछ भी अर्जन करता है, तो इससे पिता का नाम बढ़ता है। लोग पूछा करते हैं किसका पुत्र है, कहीं भी जाए किसी भी क्षेत्र में, तो सबसे पहले तो किसी व्यक्ति से यही पूछा जाता है ना, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, फादर्स में कहीं जाए। यदि पुत्र गुणवान हो जाता है तो उससे पिता का यश बढ़ता है। तो प्रत्येक पुत्र का यह कर्तव्य है कि वो अपने पिता के यश को बढ़ाए। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि यदि तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हमसे अधिक कार्य करो, यदि नहीं कर सके तो कम से कम मैंने जो किया है उसको बचा कर रखो। इतना तो करो, बारंबार कहा करता। तो प्रहलाद महाराज अपने जीवन में बहुत सी विशेषताएं अर्जित किए थे, गुण उन्होंने अर्जित किया था, इसीलिए नारद जी सबसे पहले उनका परिचय दे रहे हैं। गुण ही महान, गुणों के चलते महान। तो कौन कौन गुण थे, थोड़े से गुण गिनाए गए हैं, इनमें अनंत गुण थे। सबसे बड़ा गुण था कि वासुदेव भगवती जस नैसर्गिकी रति, आगे का श्लोक में आएगा। भगवान कृष्ण में उनकी स्वाभाविक रति थी, जन्म से किसी की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे अन्य लोगों की रति विषय भोगों में रहती है स्वाभाविक, वैसे प्रहलाद महाराज की मति भगवान कृष्ण के रूप गुण लीला आदि में स्वाभाविक लगी हुई थी। समस्त गुणों में श्रेष्ठ गुण यह था, और इसी के कारण अन्य समस्त गुण डेवलप्ड हो गए थे। जत्रास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्वैर गुणस्त प्रसमासते सुरा, श्रील प्रभुपाद जी इसको कोट किए हैं। जिस व्यक्ति में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति होती है उसमें सारे गुण हो जाते हैं, और समस्त देवता उसके भीतर वास करते हैं अपने अपने गुणों के साथ। भिन्न भिन्न प्रकार के देवता हैं और उनमें भिन्न भिन्न गुण है, तो उन गुणों के साथ सभी देवता उस भक्त के भीतर निवास करते हैं जो भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त होता है। जत्रास्ति भक्तिर भगवत अकिंचना, अकिंचना भक्ति, जिस भक्ति में भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला हो उसको अकिंचना भक्ति कहते हैं। अकार्थ नहीं और किंचन का अर्थ कुछ, जिसमें और कुछ न मिला हो, केवल ईश्वर आराधन रूप, केवल भगवान को प्रसन्न करने की भावना और उसकी कार्यावली हो, उसको अकिंचना भक्ति कहते हैं। तो प्रहलाद महाराज का वर्णन करते समय महान कहा जा रहा, महान थे। कैसे महान, गुण ही महान। अब गुणों का कुछ वर्णन करें। महत उपासक, महत उपासक का अर्थ है जो महत है, जो कृष्ण भावना में भगवान की भक्ति में बहुत बढ़े चढ़े हैं उनको महत कहा जाता है। वास्तव में किसी की महानता या नीचता का मानदंड यही है, जो व्यक्ति जितना ही कृष्ण में रचा पचा है उतना ही महान है, और जो कृष्ण को भूलकर विषयों में जिस डिग्री पर रचा पचा है वो नीच, उसकी नीचता है। तो महत उपासक का अर्थ महतान उपासक, भक्तों से प्रेम करने वाले प्रहलाद महाराज, यह उनकी एक विशेषता। उपासना का अर्थ कई होता है, उपासना का अर्थ पता है पूजा करना, भजन करना, प्रसन्न करना, लेकिन एक अर्थ है संस्कृत में इमेडिएट होता है निकट बैठना, उपकार है निकट, आसन आसक का मन बैठने वाला, महान पुरुषों के पास बैठने वाला वो लड़का था शुरू से, जो भगवान की भक्ति में थे कृष्ण भावना में थे उन्हीं लोगों का संग उसको पसंद था। और कोई व्यक्ति किसी के पास क्यों बैठता है, जिसके पास वो बैठता है जिसके पास रहता है उसमें उसकी रुचि होती है, अपने आप को चला जाता है। एक विषयी व्यक्ति विषयों के पास बैठेगा, एक सैनिक सैनिकों के पास बैठता है, तो इस तरह से जो जैसा होता है वैसे पुरुष के पास बैठता है। जो व्यक्ति धन कमाना चाहता है, बहुत बड़ा धनवान बनने की लालसा है, वह धनियों का संग करना चाहेगा और पता लगाएगा कि ये लोग कैसे धन कमा रहे हैं, किस उपाय से, है ना, वो पूछताछ करता रहेगा, एडवर्टाइजमेंट देखता रहेगा, कई बातें हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना में उन्नति चाहता है वह कृष्ण भावना में उन्नत पुरुषों के पीछे रहेगा, उनको प्रसन्न करके उनकी कृपा से भगवान की भक्ति में विकास करना चाहेगा। तो प्रहलाद महाराज में यह गुण था, महद उपासक, वे महान पुरुषों के, महत पुरुषों के, कृष्ण भक्तों के उपासक। ब्रह्मांड शील संपन्न सत्य संधो जितेन्द्रिय, आप गिनते गए कितने गुणों का वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहले कहा गया गुण ही महान, यह पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है महद उपासक, उपासक, और तीसरी विशेषता बता रहे हैं ब्रह्मांड। तो दो प्रकार की वस्तुएं हैं इस संसार में, एक है ब्रह्म और एक है माया। ब्रह्म का अर्थ होता है चिद पदार्थ, चिन्मय ज्ञानमय वस्तु, और माया का अर्थ होता है जड़ वस्तु। तो इस संसार में मायामय वस्तुओं की ही अधिकता है, सब जगह माया से बनी हुई वस्तुएं, और कुछ चित कण है जीव शरीर के भीतर, और इसके अलावा भगवान है, और भगवान का, जीव का और जगत का सबका वर्णन करने वाला वेद शास्त्र, उसको भी ब्रह्म कहते हैं, कभी कभी उसको शब्द ब्रह्म कहते हैं। तो जो व्यक्ति वेद शास्त्र के अनुसार केवल भगवान को अपने जीवन में अपनाता है, चुनता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं या ब्राह्मण कहते हैं, और जो व्यक्ति ब्रह्म को, भगवान को भूल करके माइक वस्तुओं में इंटेंगल होता है उसको मायावी या मायावादी कहते हैं। ऐसे मायावादी का दूसरा अर्थ होता है, लेकिन मायावादी उसे भी कहते हैं जो माया का ही वर्णन करता रहे, वाद माने बोलना, ये न्यूज़पेपर छाप छाप करके माया का वर्णन कर रहे हैं, तो वो भी मायावादी एक प्रकार से। लेकिन तत्वतः मायावादी उन्हें कहा जाता है जो भगवान के रूप गुण धाम लीला आदि को माया का विकार कहते हैं, जो प्रसिद्ध मायावादी। परंतु जो माइक वस्तुओं में लगे रहते हैं केवल खाने पीने सोने पहनने, उनको माया में लिप्त मायाबद्ध जीव कहते हैं, और जो ब्रह्म को पसंद करते हैं भगवान कृष्ण को, और कृष्ण के गुणों का वर्णन जिन शास्त्रों में किया गया है उन शास्त्रों से और भगवान से जो प्रेम करते हैं, वही बोलते हैं, सोचते हैं, संकल्प करते हैं, उनको ब्रह्मण्य कहा गया है। तो प्रहलाद महाराज का गुण वर्णन किया जा रहा है, वो ब्रह्मण्य थे। माया के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं में उनकी कोई रुचि नहीं थी। इस तरह से इस संसार में एक ज्ञानी या विवेकी पुरुष का लक्ष्य होना चाहिए ब्रह्म है, भगवान। और जो भगवान को अपने जीवन का सब कुछ स्वीकार करता है उसको ब्राह्मण कहा गया। यद्यपि हिरण्यकश्यपु के सभी लड़के बड़े विलक्षण थे, लेकिन उनमें प्रहलाद महाराज तो भगवान कृष्ण को पसंद किए, पसंद ही नहीं किए, वास्तव में उसके लिए वे रात दिन आविष्ट रहे। कितनी बड़ी बाधा उनके जीवन में आई भगवान की भक्ति छुड़ाने के लिए। भी कहा जा रहा था तुम केवल हरे कृष्ण कहना छोड़ दो, गप की सिंहासन तुम्हारे लिए रखा हुआ है, और नहीं अगर ऐसा करते हो तो सिंहासन तो दूर की बात है, तुम जी नहीं सकते हो, बोलो क्या पसंद। ऐसा कहने पर वे हिरण्यकश्यपु को ही प्रीच करने लगते थे, तुम इस प्रकार का विचार छोड़ो, भगवान का भजन करो, क्या है दुनिया में। छोटा बच्चा और अपने पिता को शिक्षा दे रहा था, जो पिता विश्व में केवल ब्रह्मा शिव और भगवान विष्णु को छोड़कर बाकी सबको अपने वश में कर लिया था, उस पिता को प्रहलाद महाराज निर्भय उत्तर दे रहे थे। क्यों? वो ब्रह्मांड्य थे, ब्रह्म में उनकी रुचि थी। ब्रह्मांड्य शील संपन्न, गुण में महान थे और ज्ञानी पुरुषों के भक्तों के उपासक थे, ब्रह्मांड्य थे, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज शील संपन्न थे। शील का अर्थ होता है नम्र व्यवहार, बड़ों के प्रति बड़े आदर से बोलना, झुक कर रहना, इसको शील कहा गया। और ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति में यदि और कोई गुण हो या न हो, लेकिन उसमें यदि शील है तो सारे गुण उसमें होते हैं, उसका आदर संसार में होता है। शीलम एव परम भूषणम, एक श्लोक में कहा गया है कि केयूर मतलब कुंडक नहीं, ये बला है, कंकर हाथ को आभूषित नहीं करते हैं, सिर को मुकुट आभूषित नहीं करता है, या हार गले को आभूषित नहीं करता है। जिस व्यक्ति में शील है उसका सब कुछ सुंदर लगता है, सब लोग उसे पसंद करते हैं। तो प्रहलाद महाराज में शील था, अभिमान थोड़ा भी छू नहीं गया था, बिल्कुल नम्र रहते थे। हम लोग ने पढ़ा है, आप श्रीमद् भागवतम में देख सकते हैं कि जब प्रहलाद महाराज अपने गुरुओं के साथ आए अपने पिता के पास, संड और अमर्क दोनों लेकर के आए थे, तो प्रहलाद महाराज अपने पिता को साष्टांग प्रणाम किए। आजकल का एक थर्ड क्लास का आदमी जिसमें कोई भक्ति नहीं है, वो पिता को प्रणाम नहीं कर कहेगा वो तो नॉन डिवोटी है, उसको क्या प्रणाम करना है, तुम ही बहुत बड़े डिवोटी हो गए हो। है ना, ऐसा सुनने में आता जब कोई भक्ति नहीं, नाम मात्र की भक्ति, फिर भी आज बताऊ पिता को क्यों प्रणाम कर, माँ को क्यों प्रणाम कर। प्रहलाद महाराज जो भक्त चूड़ामणि है, भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है, वे अपने पिता को साष्टांग प्रणाम करते हैं भेंट होने पर। और तो और अंतिम जीवन में भी जब वो मार दिए गए हिरण्यकश्यपु, भगवान ने मांगने के लिए वर कहा तो प्रहलाद ने कहा मैं कुछ भी नहीं मांगता हूं, लेकिन फिर भी वे भगवान के जाते समय वो यह मांगे कि हमारे पिताजी ने आपकी बहुत निंदा की थी, उनको बहुत बड़ा पाप लगा है, उनकी दुर्गति होगी, इसलिए कृपा करके उनको क्षमा कर दीजिए, उनकी दुर्गति न होने पर। वह प्रहलाद जिसकी जान मारने के लिए हिरण्यकश्यपु कोई भी उपाय बाकी नहीं छोड़ा, कुछ भी किया है, लेकिन फिर भी पिता के प्रति इनका वही स्नेह था। भगवान से कुछ नहीं मांगे, अपने पिता के उद्धार की इनको चिंता थी, इसके लिए मांगे बाप। तो भगवान ने कहा, अरे बेटा तुम्हारे कुल के 21 पीढ़ी का उद्धार हो गया है तुम्हारे जन्म लेने से, तुम्हारे पिता तो तुम्हारे दूसरी ही पीढ़ी में, इसकी चिंता मत करो। भगवान स्पष्ट कहते हैं, मैंने जो इसको टच किया है, मदंग संग है, मेरे इस दिव्य स्पिरिचुअल शरीर का जो इसको स्पर्श हुआ है, इससे और भी रात दिन जो मेरा चिंतन किया है, इससे सारे पाप इसके ध्वस्त हो चुके हैं, आप चिंता मत करो। तो इस प्रकार एक परम द्रोही व्यक्ति के प्रति भी प्रहलाद महाराज की यह सद्भावना थी, व्यवहार में बिल्कुल नम्र रहते थे, अभिमान तो छू तक नहीं गया था इनको, इसको शील कहते, शील संपन्न, संपन्न का अर्थ है पूर्ण, सब तरह से परिपूर्ण, शील से संपन्न, सत्य संध, सत्य संध, संधा या संधि का अर्थ होता है संकल्प, प्रतिज्ञा। प्रहलाद महाराज कोई भी व्रत लेते थे जीवन में तो उसे सत्य करते थे, या अपने कहे हुए वचन को सत्य करते थे, सत्य संध। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जानबूझकर के वे नियम तोड़ दें, कोई बहाना बना करके नियम तोड़ दें, या कहे सॉरी मैं नहीं कर सकता। हम लोगों की ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि अपने द्वारा कहे हुए वचन को भी हम पूरा नहीं कर पाते, दूसरे का क्या करेंगे। कम से कम अपनी स्थिति को जानना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, कितना कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बात मुख से निकल जाए उसे पूरा करना चाहिए, इसको सत्य संध कहते हैं। और विशेष करके इसका संबंध भगवान की भक्ति से है कि जब हमने व्रत लिया भगवान के भजन का, जैसे जप करना है 16 माला, तो किसी भी स्थिति में कर ही लेना है, इसको सत्य संध कहते हैं। जो हमने जीवन में नियम लिया, हमें जब करना है तो करना ही है, हमें यह मानकर नहीं टाल देना चाहिए चलो कम भी रह जाएगा तो भगवान का नाम है, कोई बात नहीं जितना ले उतना ही, ये तो ठीक है भगवान का नाम जितना ही लेना है उतना ही ठीक है, लेकिन हमारे हमने जो व्रत लिया, नियम लिया, तो नियम को पूरा करके जगत के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, जितना करेंगे इस समय जगना है तो जगेंगे। एकादशी का व्रत है तो व्रत कर रहे हैं तो व्रत कर निभाए, ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत विश्वास पात्र होता है दूसरे लोगों का, शत्रु भी विश्वास करते हैं कि यह व्यक्ति करेगा, इस स्थिति में ये करेगा। और जो व्यक्ति अपने नियम का पालन नहीं करता है, इस गुरुजनों के द्वारा बनाए गए नियम या शास्त्र के नियम, तो वह व्यक्ति विश्वास खो बैठता है समाज में सब जगह। इसलिए अपने अपनाए गए नियम को दृढ़ता के साथ पूरा करना चाहिए। भगवान ने गीता में इसी बात को कहते हैं, भजन्ते माम दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रत और नियम के साथ महात्मा लोग मेरा भजन करते हैं। तो प्रहलाद महाराज सत्य संग थे, उनकी प्रतिज्ञा उनका व्रत सब सत्य था। जितेंद्रिय अपने मन और इंद्रियों के वे विजेता थे। वर्तमान समय में मायाबद्ध जीव की ये दशा होती है कि जीव ही इंद्रियों के अधीन चलता है। सभी लोग अगर आंख कहती है ये देखना है तो ठीक देखना है, जीव है हृदय में आत्मा, लेकिन वो इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियां मांग करती है हमको ये चाहिए हमको ये चाहिए हमको ये चाहिए। जैसे जिह्वा अगर मांग करे तो हमको सिगरेट दो, धुआं दो, मैं धुआं पीना चाहती हूँ, तो आत्मा जाता है शरीर को लेकर के दुकानों से खरीद करके लाता है। यदि आत्मा न जाए शरीर में तो शरीर जड़ तो जा नहीं सकता है, इसमें चेतन शक्ति आत्मा दे रहा है। तो कहीं सिनेमा भवन की ओर जा रहा है, चाहे कहीं जा रहा है, किसी स्टोर में बहुत दूषित खाद्य पदार्थ खाने के लिए जा रहा है, तो शरीर को लेकर के आत्मा जा रहा है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, शरीरम जद अवाप्नोति जच्चापित क्रामति स्वरा गृहीतानि संयाति विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। और ममैवांसो जीव लोके जीव होता सनातना मनो खष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकती। ये जो मन सहित छह इंद्रियां हैं और ये जो शरीर है, इसको आत्मा कर सकती, खींचता है, इधर उधर ले जाता है। वो जो स्पार्क है चेतना का, छोटा चित्त कर्ण जीव, वही शरीर को ले जा रहा है कहीं। लेकिन इस समय यह इंद्रियों के वश में है, इंद्रियां जहां चाहती हैं वहां ले जाती, शक्ति इसकी है, प्लान इंद्रियों का है, इंद्रियां जैसे मांग करती हैं वैसा जाता है। प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में नृसिंहदेव के प्रति जो स्तुति की है, उसमें कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु, इस देहपति की ऐसी दशा है, देहपति में आत्मा की, जीव की, जो बहुत स्त्री रखने वाले गृहपति की होती है। पहले जमाने में अब भी कोई हो सकता है जो बहुत सी पत्नी रखे, तो पत्नियां भिन्न भिन्न जगह की होती है और उनमें परस्पर प्रेम नहीं होता है, प्रत्येक की मांग अलग होती है। हमारे लिए वस्त्र लाओ, हमारे लिए अलंकार लाओ, हमारे लिए नया घर बनाओ, ये करो वो करो। तो मान लीजिए किसी की 10 स्त्रियां हों और 10-10 और खींचे उसको, तो उस व्यक्ति की क्या हालत होगी? मरना निश्चित है। कहीं बाजार करके आवे, मार्केटिंग करके, और आंगन में प्रवेश करे और 10 आकर खींचने लगे, हमारे घर में चलो, हमारे घर में चलो। कोई हाथ पकड़े, कोई पैर, कोई केस, कोई कान, कोई कुछ, तो कई टुकड़ों में बांट देंगे। और कहने के लिए वो गृहपति है, गृहपति। प्रहलाद महाराज ने कहा है कि जैसे गृहपति की को वाइफ्स, उसकी सौतेली पत्नियां अपने अपने घर में उसको खींचती हैं, उसको चैन नहीं मिलता, उनकी मांगों की सप्लाई करने में ही वो बेहोश रहता है, उसी तरह से यह जीव देहपति, कहने के लिए देह का पालक है, देह में रह रहा है, लेकिन इंद्रियों की मांग को पूरा कर रहा है। क्या क्या पूरा करेगा? तो हम लोग इंद्रियों के अनुसार चलने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग वास्तव में परमात्मा के डायरेक्शन में चलने के लिए आए हैं। वे जैसा कहे वैसा हमको करना है, इंद्रियां जैसा कहती है वैसा नहीं करना है। भगवान गीता में एक जगह प्रवचन कर रहे हैं तो उन्होंने कह दिया कि जही शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम, हे कुंती नंदन, तुम महान वीर हो, तुम्हारी भुजा बहुत महान है, इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। तो मानो अर्जुन ने यह कह दिए कि अरे काम तो बहुत बलवान है, मेरी क्या शक्ति है कि मैं मार सकता हूं। तब भगवान बताते हैं नहीं नहीं, आत्मा की बहुत शक्ति है। तो वहीं पर एक श्लोक में बताते हैं, इंद्रियाणि परायाहु, इस शरीर के भीतर इंद्रियां जो हैं अन्य अंगों से श्रेष्ठ है, पराणि श्रेष्ठ है, इंद्रियाणि पराणि आहु, और इंद्रियेभ्यः परम मन, और इंद्रियों से बढ़ करके है मन, मनसस्तु परा बुद्धि, और मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि, और यो बुद्धे परतस्तु सह, और बुद्धि जैसे भी जो श्रेष्ठ है वो है आत्मा। तो तुम तो आत्मा हो, तुम बुद्धि से भी श्रेष्ठ हो, मन से भी श्रेष्ठ हो, इंद्रिय से श्रेष्ठ हो, इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए तुम अपने स्वरूप को समझो और काम को मारो, मतलब इंद्रियों की मांग को पूरा मत करो। इंद्रियां हमारा सर्वेंट, हमारा गुलाम होनी चाहिए, न कि हम उनके गुलाम हो जाए। तो प्रहलाद महाराज जितेंद्रिय अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में रखकर भगवान की सेवा में लगाए थे, जितेंद्रिय का यह अर्थ। जितानी इंद्रियाणी जेन स जितेंद्रिय, जिसके द्वारा सारी इंद्रियां अपने वश में कर ली गई, और वश में इंद्रियां कर ली गई है, इसका अर्थ यह नहीं कि वश में करके कोठरी में बंद कर दी गई है। वश में करने का मतलब है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा कर रहे हैं, उनसे काम लेना है, इंद्रियों से काम लेना है, जैसे भगवान का दर्शन करना है, हाथ से सेवा करनी है, पैर से चलना है तो भगवान के लिए चले, कान से सुनना है तो भगवान की बात सुने, जीवा से खाना है तो भगवत प्रसाद खाएं, तुलसी की सुगंध सूंघे, कथा सुने कान द्वारा, इसको कहा जाएगा कि जितेंद्रियता। जैसे आप लोग कथा में आए हैं तो एक इस उदाहरण द्वारा बात समझ में आ रही है कि जब आप घर से निकले होंगे तो वास्तव में आपका प्लान है कथा में आने का, इंद्रियों का प्लान नहीं, आत्मा का प्लान है कि चले, तो आत्मा चला तो बेचारे इंद्रियां करें क्या, उसके बस में होकर के वो साथ में आ रही है, क्योंकि ये देहपति है, जहां जाना चाहेगा वहीं जाएगा देह, लेकिन जब अपने स्वरूप में रहेगा तब ना, नहीं तो अपने स्वरूप को भूल गया तो इंद्रियां जहां कहेंगे वहां जाएगा। तो भगवान की भक्ति में इन इंद्रियों को इंगेज करना है। हृषि के सेवनम भक्ति उच्चते, इंद्रियों से इंद्रियाधिपति भगवान की सेवा को भक्ति कहा जाता है। तो जितेंद्रिय थे प्रहलाद महाराज, ये उनके गुणों का वर्णन किया जा रहा है। कभी भी इंद्रियों के मांग के अधीन वे नहीं हुए, इंद्रियां उनके अनुसार भगवान की सेवा में लगी हुई थी। आत्मवत सर्वभूतानां एक प्रिय सुहृत्तमा, आत्मवत आत्मा के समान, आत्मा का अर्थ होता है सुपर सोल, परम आत्मा भगवान। भगवान जिस तरह समस्त प्राणियों के सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानां सभी जीवों के, इस तरह प्रहलाद महाराज परमात्मा के तरह सबके सुहृद थे, सबके ही पैसे। अब इससे अधिक क्या गुण कहा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति संसार में कितना भी उदार बने लेकिन परमात्मा जैसा हितैषी होना कठिन। हम लोग अपने परिवार की चिंता करते हैं, समाज की चिंता करते हैं, संघ की चिंता करते हैं कि इतने आदमी ठीक रहें, ये रहें, वो रहें। सौहार्द करने की शक्ति तो नहीं है, लेकिन सौहार्द की भावना तो हो सकती है, पर भावना भी नहीं रहती। तो प्रहलाद महाराज परमात्मा की तरह, भगवान कृष्ण की तरह समस्त प्राणियों के सुहृद थे और प्रिय थे, प्रिय सुहृदतम। वास्तव में भगवान सबके प्रिय हैं। शरीर में जब तक परमात्मा रहते हैं तब तक शरीर से लोग प्रेम करते हैं, और जब भी परमात्मा शरीर को छोड़कर चला जाता है अपने अंश जीवात्मा के साथ, तो शरीर से कोई प्रेम नहीं करता है। देखा गया संसार में कोई किसी भी जाति का या किसी भी धर्म का फॉलोअर हो, डेड बॉडी से कोई प्रेम नहीं करता है, है? तो जब तक शरीर चेतन है तब तक प्रेम है। तो चेतना क्या है? दो प्रकार की चेतना है शरीर में। सुप्रीम चेतना जो एक ही चेतना समस्त शरीरों में है वो है भगवान, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। लेकिन इसके साथ एक इंडिविजुअल चेतना है, वो है जीव। तो जीव भी भगवान का अंश है। तो जीव है और भगवान दोनों शरीर को छोड़कर जब निकल जाते हैं तो यह शरीर डेड कहा जाता है, मृतक कहा जाता है। मृतक शरीर से कोई प्रेम नहीं करता, सुना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता। तो शरीर में जो वस्तु थी जीवित समय में, वास्तव में प्रेम जो है उसी वस्तु से है, ये सिद्ध हुआ। उस वस्तु के निकल जाने पर मृतक शरीर से प्रेम नहीं रहता है, तो सिद्ध हुआ कि प्रेम जो था वह उस चेतन वस्तु से था। तो वास्तव में भगवान प्रिय हैं। तो जिस प्रकार भगवान से लोग प्रेम करते हैं, जनता उस तरह से प्रहलाद महाराज से प्रेम करती है, इतना प्रिय थे, परमात्मा की तरह प्रिय थे और परमात्मा के समान दूसरों का हित करने वाले थे, सुहृदतम। यहां तक नारद जी कहते हैं एक कौ, प्रहलाद महाराज परमात्मा की तरह सबके प्रिय थे और सबका हित करना चाहते थे, और ऐसे गुण वाले वो अपने समय में एक ही थे, उनके समान ऐसा कोई नहीं था जो इतना सबका प्रिय हो और सबका सुहृद। एक प्रिय सुहृद बने, एक अहकार तो अद्वितीय, ऐसा दूसरा कोई नहीं, मतलब इनके समान दूसरे का हित चाहने वाला कोई नहीं। और इस विषय में प्रमाण है, भगवान नृसिंह देव से प्रहलाद महाराज ने एक जगह प्रार्थना किया है इसी भागवत में कि हे प्रभो, ये संसार की सृष्टि करना और सृष्टि करके सबकी व्यवस्था करना, पालन पोषण करना, हम समझते हैं कि इसमें आपको बहुत प्रयास है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन इन जीवों को यदि आप वैकुंठ भेज देते हैं तो भेजने में तो आपको कोई प्रयास नहीं है और सृष्टि स्थिति पालन करने का जो परिश्रम है वो आप उससे मुक्त हो जाएगा। दुनिया बनाना, बना के चलाना कहू का काम है, वास्तव में इतने जीवों की उत्पत्ति करना, सबको भोजन कपड़ा सब कुछ देना है, कठिन काम है। तो आप क्यों इतना क्लेश उठा रहे हैं, सबको मुक्त कर दीजिए, अपने धाम में भेज दीजिए, वहां तो कोई परिश्रम नहीं, वहां तो स्वाभाविक प्रकृति है, दिव्य जीवन है, आपको भी कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। और परमात्मा के रूप में भगवान यहां जीवों के हृदय में रहते हैं, वैकुंठ में नहीं, क्योंकि वो तो जो पार्षदों का शरीर होता है खुद ही चिन्मय होता है, वहां भगवान की जरूरत नहीं पड़ती है, उनका शरीर जो होता है भगवान से बिल्कुल प्रेम से भरा रहता है नाबालक। लेकिन इस जगत में तो सबके हृदय में उनको रहना पड़ रहा है, एक एक जीव को गाइड करना पड़ रहा है, मत्त स्मृति ज्ञानम पोहनम, एक एक जीव को, एक दीमक को स्मृति देने के लिए बैठे हैं, दो राष्ट्रपति को स्मृति देने के लिए बैठे हैं, वृक्ष में कीट पतंग में, तो लगता है कि भगवान भी परेशान हो रहे होंगे, यद्यपि वास्तव में भगवान कुछ भी परेशान नहीं है। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कहा कि कोटि प्रयासो असुर बाल का कुन्वन तेखिल गुरु भगवान प्रयास उत्तारणेश भव संभव लोपहेत, इस संसार की सृष्टि करने में, पालन करने में, प्रलय करने में तो आपको बहुत परिश्रम होता है, लेकिन जीवों को यदि आप वैकुंठ भेज देते हैं तो इसमें क्या परिश्रम। तो प्रहलाद महाराज के प्रार्थना से भगवान ने एक ब्रह्मांड के समस्त जीवों को वैकुंठ भेज दिया, कथा है। एक ब्रह्मांड में कितने जीव हो सकते हैं, किसी की कल्पना शक्ति से बाहर की बात है, सभी जीव। ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना से भगवान ने कहा, कितना बड़ा हित ऐसी था सबका, वह व्यक्ति केवल दूसरों के हित की बात सोचते रहे। इसीलिए नारद जी कहते एक प्रिय सुहृत्तमा, वे अद्वितीय अनपैरेलल, अद्वितीय हितैषी थे और अद्वितीय प्रेमी थे, प्रिय थे भगवान के। ये प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन चल रहा है। दास वत्सन्नता अर्जांघ्री, आर्ज अंघ्री, आर्जों के चरण में वे दास की तरह रहते थे, दासवत। इसे एक ही श्लोक में कई बार वत शब्द का प्रयोग है, दासवत, पितृवत, भ्रातृवत। तो जो श्रेष्ठ लोग थे आर्ज, आर्ज का यह अर्थ है गुणों में महान और संबंध में जो श्रेष्ठ थे, जैसे बड़े भाई या पिता माता या स्पिरिचुअल मास्टर, इनको आर्ज कहा। तो आर्जों के चरण में सन्नत, एक सन्नत रहते थे, उनके सामने बिल्कुल झुके रहते थे, और कैसे व्यवहार करते थे उनके प्रति, दासवत, एक मेनियल सर्वेंट की तरह उनकी सेवा करते थे, इस तरह से रहते थे दासवत। ऐसा लगता था जैसे उनके नित्य नियुक्त किए हुए दास, बड़े लोगों के प्रति इनका ये व्यवहार था दासवत, और दीनों के प्रति जो लोग शिक्षा में या धन में या शरीर आदि में हीन है, हीन थे, उनके प्रति कैसा इनका व्यवहार था, पितृवत, पिता जैसे, जैसे माता पिता अपने गुणहीन बच्चे से भी प्रेम करते हैं, दीनहीन और अपर है या जड़ बच्चे से भी स्नेह करते हैं माता पिता, उस तरह से प्रहलाद महाराज गुणों में हीन लोगों से प्रेम करते थे। बड़ों के सामने दास के समान रहते थे और जो हीन थे सामाजिक स्तर में, धन में, ज्ञान में, उनके प्रति माता पिता जैसा रहे। माता पिता कितना प्रेम से बच्चों का पालन करते हैं, इस तरह से उन लोगों के प्रति भाव रखना चाहिए जो हमसे धन में कम है, विद्या में कम है, जिनको रोग है शारीरिक, शरीर ठीक नहीं है, उनके प्रति मन में भावना उठे कि मैं उनकी माँ हूं, मैं उनका पिता हूं, उनका हित करना चाहिए, इस तरह की भावना प्रहलाद महाराज के हृदय में भरी रहती थी। कितनी महान भावना है, पितृवत दीन वत्सल, पिता माता पिता के समान दीनों से स्नेह करने वाले थे, और भ्रातृवत सदृश स्निग्ध, और जो सदृश थे, सदृश का अर्थ है धन में, ज्ञान में, सामाजिक स्थिति में, सुंदरता में, जो उनके समान थे, उनके साथ उनकी प्रतिद्वंद्वता नहीं थी, उनके साथ वे ऐसा व्यवहार करते थे जैसे हमारा सहोदर भाई, भ्रातृवत, जैसे हम लोग अपने भाइयों से स्नेह करते हैं, स्निग्ध रहते हैं। अगर भाई मान लीजिए हमसे, हमारे समान धनी है या हमसे ज्यादा धनी हो गया, तो किसी अच्छे भाई को इससे दुख नहीं होता और प्रेम बढ़ता है, वो चाहता है एक भाई कि हमारा अन्य भाई भी हमारे जैसे हमसे भी बढ़ करके, तो बड़ों के प्रति दासवत, दीनों के प्रति पितृवत और समान लोगों के प्रति भ्रातृवत, इस प्रकार का व्यवहार। प्रहलाद महाराज के गुणों को सुनने से भी हम लोग पवित्र हो जाएंगे। वे गुण तो आना कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान से इस बात को सुनता है तो मन में एक लालसा होती है कि ओहो, क्या कुछ भी मात्रा में ये गुण हमारे भीतर भी आ सकते हैं, और किसी में भी आ सकते हैं। वास्तव कोई व्यक्ति चाहे और उपाय का अवलंबन करे तो ये गुण आ जाते हैं, धीरे 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 गुण आ सकते हैं। और गुरुसु ईश्वर भावना, और गुरुसु गुरुओं में, यहाँ गुरु का अर्थ है माता पिता, बड़ा भाई और टीचर, या वेद शास्त्र का ज्ञान देने वाले, गुरु से बहुवचन में है। गुरुओं के प्रति प्रहलाद महाराज का क्या व्यवहार था, उनका भाव था, वो तो उनको भगवान मानते थे, ईश्वर भावन, अपने पिता को वे ईश्वर समझते थे। यहाँ ईश्वर भावना का अर्थ, एक तो अर्थ है कि वे भगवान मानते थे, और दूसरा मानते थे कि वे हमारे कंट्रोलर, हमारे मास्टर, उनके अधीन हमको रहना है, वो जो नियम बना रहे हैं उसके अनुसार चलना है, यह अर्थ। गुरुसु ईश्वर भावना, चार व्यवहार इनके लिखे गए हैं। कोई भी व्यक्ति जो श्रेष्ठ था उसके प्रति दासवत, खास करके श्रेष्ठ से और भक्तों से है, जो कृष्ण भावना में अग्रसर थे उनके प्रति दासवत व्यवहार करते थे, और दीनों के प्रति पितृवत, समान के प्रति भ्रातृवत, और गुरुजनों में ईश्वर बुद्धि करते थे। और विद्यार्थ रूप जन्माढ्या, चार से वे बिल्कुल संपन्न थे, विद्या, अर्थ, रूप और जन्म, ये चार बहुत बड़े गुण माने जाते हैं मनुष्यों में। कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो वेद शास्त्र, इसको विद्या कहते हैं, विद्या। तो प्रहलाद महाराज लौकिक दृष्टि से भी सीमा की पढ़ाई कर चुके थे। आजकल क्या सीमा है पढ़ाई की, पढ़ाई कोई सीमा नहीं है ना, पीएचडी शोध करते हैं और क्या क्या, यह पढ़ो वह पढ़ो, एक विषय केवल। प्रहलाद महाराज तो सब विषय पढ़े थे, सारी विद्या कहे थे और अर्थ कितना था धन, अब इसका क्या अंदाज किया जा सकता है, जब विश्व का मालिक ही अपना बात था तो धन तो सब इनका ही था। विद्या अर्थ और रूप और ये बहुत सुंदर थे, भगवान विष्णु के समान सांवला इनका शरीर था, बहुत सुंदर और जन्म भी बहुत ऊंचे वंश में हुआ था। कितना ऊंचे वंश में हुआ था कि ये ब्रह्मा जी के प्रपौत्र के पुत्र, ऐसे जैसे ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के कश्यप, कश्यप के हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद महाराज, ब्रह्मा जी से केवल चौथी पीढ़ी में थे। कितना ऊंचा जन्म है। तो जन्म की दृष्टि से बहुत ऊंचे वंश में जन्म था इनका, और विद्या बहुत पढ़े लिखे थे, पैसा बहुत था, सौंदर्य बहुत था, लेकिन फिर भी मानस स्तंभ विवर्जित, कभी इनके भीतर यह भाव नहीं आया कि मैं पूज्य हूं, मेरा आदर होना चाहिए क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, राजा का पुत्र हूं, बहुत सुंदर हूं, बहुत धनी हूं, इस तरह की भावना उनके भीतर नहीं आई और कभी उदंडता नहीं आई। स्तंभ का अर्थ होता है खंभा जैसा खड़ा रहना, झुकना नहीं, ऐसा नहीं मतलब इनमें नम्रता का अभाव कभी नहीं हुआ है। यदि चार वस्तुएं ऐसी हैं जिनके कारण व्यक्ति उदंड हो जाता है, उच्छृंखल हो जाता है, चार में से एक भी हो तो मनुष्य की चेतना दूषित हो जाती है। जैसे विद्या, और कुछ भी ना हो, कोई बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाए तो समाज में कहता तुमको है पता मैं कितना पढ़ा है, अभी अपनी डिग्री दिखाता है इतना पढ़ा है। और रूप, रूप का अर्थ जवानी, जवान व्यक्ति बहुत मद में होता है, सब प्रकार के अनर्थ कराने वाली जवानी होती है। जवानी में जो अपने को कंट्रोल में रख ले वही वास्तव में संयमी है, वही जोगी है, नहीं तो बुढ़ापा में कौन नहीं शांत हो जाता है वैसे ही शांत हो जाना है। जो व्यक्ति युवावस्था में अपने कामनाओं के वेग को रोक सके वही वास्तव में वीर है। तो जवानी, विद्या, धाम और उच्च वंश में जन्म, ये बहुत खतरनाक। महारानी कुंती ने कहा है भगवान कृष्ण से कि जो इस तरह से संपन्न है वे तो आपका नाम भी नहीं ले सकते, ऐसा जन्म स्वर्ग श्रुता श्री भी एधमान मदह कुमान नैवा रहत कभी धातु में त्वाम किंचन गोचरम, वो तो कृष्ण गोविंद आदि आपका नाम भी नहीं जप सकते, ऐसा कुंती ने कहा है। और रियली हम लोग देखे हैं समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भगवान का नाम बोलने में अपनी हीनता समझते हैं, नहीं बोलते। और प्रहलाद महाराज में सभी गुण थे लेकिन फिर भी उनके अंदर रिस्पेक्ट की भावना नहीं आई कि मेरा आदर होना चाहिए, और वे कभी उदंड नहीं हुए, नियमों की अवहेलना नहीं की, उन्हें नम्रता बनी की बनी रह गई। मान और स्तंभ से विवर्जित थे, विशेषण वर्जित, उनमें थोड़ा भी प्रवेश नहीं था। ये सब गुण है वास्तव में। आजकल तो आदमी थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसको कौन कौन लोग प्रणाम कर रहे हैं वो देखता भी नहीं कुछ लोगों को हम लोग देखते हैं ऐसे जा रहे हैं, कितने लोग प्रणाम कर रहे हैं वो देखते भी नहीं है, कौन प्रणाम कर रहा है क्या कर रहा है, इस तरह से इसको स्तंभ कहते हैं। थोड़ा सा आदर हो गया बस अंधा हो गए, नहीं गिन रहे हैं कि कौन हमारे सामने झुक रहा है। ये नियम है वास्तव में, कोई कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसको कोई प्रणाम करे तो उसका कर्तव्य है कि उस प्रणाम को लौटा रहे प्रणाम द्वारा। हमारे भारतवर्ष में नियम है, कोई कहता है प्रणाम तो दूसरा भी कहता है प्रणाम, है ना, ऐसा कहता है। तो प्रणाम का पात्र कौन है, हृदय में जो भगवान है वही प्रणाम के पात्र है। वास्तव में प्रणाम परमात्मा को किया जाता है, दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं किया था शिव जी ने, तो उनकी पत्नी पार्वती जी सती जी पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं प्रणाम किए सभा में। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं शरीर को प्रणाम नहीं करता हूं, पंचभूत से बने हुए हाड़ चाम रक्त मांस इसको थोड़ा मैं प्रणाम करूंगा, इस शरीर के भीतर रहने वाले परमात्मा भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। दक्ष प्रजापति देहाभिमानी है इसलिए मैं उसको प्रणाम नहीं किया, परमात्मा को तो मैं प्रणाम कर लिया। तो वास्तव में जो प्रणाम किया जाता है वो इस देह को प्रणाम नहीं किया जाता है, देह के भीतर अस्थित भगवान को प्रणाम किया जाता है। तो जिसको प्रणाम किया जाता है वह अभी प्रणाम करने वाले के हृदय में भगवान को देखकर प्रणाम करता है, प्रणाम प्रणाम नमस्ते नमस्ते ये राम राम हरे कृष्णा इस तरह से किया जाता है। इसलिए प्रणाम करने वालों के सामने जरूर झुकना चाहिए, ये शास्त्र का नियम। तो प्रहलाद महाराज इस तरह से बहुत पूज्य थे, बड़े थे, लेकिन फिर भी वे मान और स्तंभ से विवर्जित थे। और भी आगे उनके गुण बता रहे हैं, नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृहः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक्। व्यसनेषु मतलब संकट के समय में विपत्तियों में न उद्विग्न चित्त, वो कभी उद्विग्न नहीं होते थे, घबराते नहीं। संसार में स्थितियां तो बदलती रहेंगी, कभी अच्छा समय आएगा कभी बुरा समय आएगा, तो व्यसन कहते हैं विपत्तियों। कभी हो सकता है धन कम हो जाए, किसी स्वजन का मरण हो जाए, या समाज में अपमानित होना पड़े, या शरीर में ही रोग हो जाए, तो इससे क्या है चलता रहेगा, उद्विग्न नहीं होना चाहिए। उद्विग्न का अर्थ है चिंता करके अपने स्वधर्म से भक्ति से हट जाना, इसको उद्विग्न कहते हैं। कुछ लोग विपत्तियों में घबरा करके भगवान का भजन छोड़ देते हैं, तो प्रहलाद महाराज ऐसे नहीं थे, चाहे लाख विपत्ति आवे लेकिन उद्विग्न चित्त नहीं थे। अब इनसे ज्यादा विपत्ति किसके जीवन में आ सकती है, जिस व्यक्ति को रात दिन मारने का उपाय किया जा रहा है, और उपाय कौन कर रहा है, सम्राट राजा, और वो अभी क्या है तो अपना बाप है, और जब बाप से प्यार नहीं मिला जिस व्यक्ति को, तो उस पर कितना बड़ा संकट। एक भीख मांगने वाला पिता भी अपने पुत्र का पालन करता है, लेकिन प्रहलाद महाराज के जीवन में तो संकट के अलावा और कुछ था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो कभी नहीं घबराए, भगवान की भक्ति जैसे करते थे वैसे करते ही रहे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
तो भगवत भक्तों के जीवन में बहुत से संकट आते हैं, लेकिन वे संकट उनको और निखार देते हैं, तेज उनका बढ़ा देते हैं। जैसे अग्नि को, जैसे सोना को अग्नि में डाला जाता है तो बेचारा सोना पिघल जाता है, बहुत अधिक आग पर सोना पिघलता है, लेकिन उसका तेज और बढ़ जाता है, उसकी जो गंदगी होती है जल कर खाक हो जाती है, तो और चमकने लगता है। तो इस तरह महान लोग विपत्तियों में और अधिक चमकते हैं, उनकी जो कृष्ण भक्ति है वो और उफान मारती है, उसी समय बल्कि उनके भक्ति का पता तो लगता है, संपत्ति के समय में उनके भक्ति का पता नहीं लगता, लेकिन विपत्ति में तो और कृष्ण भावना में दृढ़ हो जाते हैं, उनका तेज बढ़ जाता है। तो विपत्तियां आती हैं शिक्षा देने के लिए, और वास्तव में किसी भी मनुष्य को चाहिए संकट में जीने की कला मालूम होनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए संकट आएगा ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पदम पदम जब विपदा, ये संसार तो विपत्तियों का स्थान है, विपत्तियां नहीं आ रही हैं यही आश्चर्य है इस संसार में। तो विपत्ति तो आएगा ही, अब इतना जमा हुआ राज था पांडवों का पूरे संसार में, चक्रवर्ती राजा पांडु के पुत्र, लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि घर द्वार सब कुछ छोड़कर वन में चला जाना पड़ा पत्नी द्रौपदी के साथ। क्या हम लोग ऐसे समय की कभी कल्पना कर सकते हैं, ऐसा समय कभी आ जाए तब कैसे रहेंगे। भगवान श्री राम को राज देने को कह करके और दूसरे दिन वन में भेज दिया गया, और वो भी अपनी पत्नी के साथ गए वन में, 14 वर्ष तक रहे वन में। हम लोग भी जीवन में बातें आते, कभी कभी 14 वर्ष तो नहीं, 14 दिन अस्पताल में भर्ती रहे। जो यह भी एक संकट है, पैसा भी जाता है, काम भी रुका रहता है, शरीर रुग्ण हो जाता है, स्वजन सब चिंतित रहते हैं। ये समय आएगा और बीच बीच में आता ही रहता है, सबका अनुभव है, लेकिन जो भगवान का भक्त है वो भक्ति से नहीं देख सकता है। हाँ, भक्ति का स्वरूप भले कुछ भिन्न होता है, कि जब राजा थे तो बड़े बड़े यज्ञ कर रहे थे, भगवान की सेवा कर रहे थे विविध दान द्वारा, और जब वन में चले गए तो पत्र पुष्प का भोग लगा रहे थे। राजा थे तो यज्ञ कर रहे थे, राजसूय यज्ञ द्वारा कृष्ण की आराधना किए, और वन में गए तो साख पात फल भोग लगा रहे। जैसी स्थिति थी वैसी भक्ति करते थे। राजर्षि भरत जी जब राजा थे तो विविध यज्ञ करते थे, और वन में चले गए तो कंद मूल फल भोग लगाते थे भगवान को। ये भागवत में वर्णन है। किसी भी स्थिति में भक्ति की जा सकती है। न उद्विग्न चित्त विषयेषु व्यसनेषु, कभी भी संकटों के समय में प्रहलाद महाराज अपने धर्म से विचलित नहीं है, किस भावना से विचलित नहीं है। और निःस्पृह, वे निःस्पृह थे, किसमें? श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु। संसार में स्वर्ग के विषय में सुनते थे, स्वर्ग में असुख है ऐसे ऐसे, उसको श्रुत सुख कहते, सुनता है। जैसे इंडिया में रहने वाला भी सुनता है अमेरिका में ये अच्छा है वो अच्छा है, तो जो लोग अभी नहीं आए हैं उनके लिए अमेरिका श्रुत है। यहाँ का सब कुछ जो भी है श्रुत है, और जो आ चुके हैं उनके लिए दृष्ट है। श्रुतेषु दृष्टेषु, तो चाहे सुने हुए भोग या देखे हुए भोगों में प्रहलाद महाराज निष्प्रिय थे, और इन गुणों में माया की वस्तुओं में इनका भाव क्या था, क्या दृष्टि थी, दृक् अवस्तु दृक्, ये तो इसको वस्तु मानते ही नहीं थे, मानते ही नहीं थे कि ये कोई चीज है, अर्थात इसको बिल्कुल अनुपयोगी मानते, जानते थे हमारी कृष्ण भावना में यह कुछ भी हेल्प करने वाला नहीं है, संसार के भोग चाहे स्वर्गीय भोग हो चाहे पृथ्वी के भोग। ये दृष्ट और श्रुत खास करके स्वर्ग और पृथ्वी के भोगों के लिए कहा गया। कुछ वस्तु तो व्यक्ति देखता है और अनुभव करता है, आंख से देखता है और अन इंद्रियों से अनुभव करते हैं, और कुछ भोग ऐसे हैं जिनके विषय में केवल सुनने को मिलता है। तो बहुत से ऐसे जीव हैं सुनने मात्र से उस भोग के प्रति उनकी आसक्ति हो जाती है, उसको पाना है, देखना है, ये है वो है। हमने देखा है अमेरिका में एक बार मैं बैठा था और कुछ आदमी एक लैंड की बात कर रहे थे, डिज्नीलैंड, तो मैं तो बिल्कुल देखा नहीं था, सुन रहा, हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं देखने की, और लोग थे, ऐसे लगता था कि अगर वो डिज्नीलैंड देख लेंगे तो स्वर्ग की यात्रा करके आ जाएंगे, ऐसा लग रहा, इतना उत्सुक थे। और करते करते हुआ क्या, वो 3 टिकट कहीं से लाए, उसमें कोई काम करता था उसने 3 टिकट दे दिए, लॉस एंजलिस के पास है डिज्नीलैंड, तो हमको लोग आग्रह करके ले गए, चलिए 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 चलिए, हमारे अंदर कोई उत्कंठा नहीं थी, लेकिन उनकी रुचि रखने के लिए मैं कहा ठीक है चलिए। मैं जा करके देखा, घूमा, जब आया तो इतना सिर दर्द हो रहा था कि आज का दिन हमारा सबसे बुरा गया, सत्य कहते अमेरिका में उतना दिन घूमा लेकिन सबसे बुरा दिन वही गया। तो क्या था, सब गुणेश माया की वस्तुएं थे, ये वो नाना प्रकार के, कोई इंद्रिय सुख भी नहीं मिला, आत्मा के सुख का तो कोई प्रश्न ही नहीं, कहीं भगवान का कीर्तन भी सुनाई पड़े, कहीं कुछ ऐसा तो था नहीं। लेकिन उसी में हजारों हजारों आदमी जा रहे हैं $50-50 दे करके, और कहीं कहीं और खरीदने की वस्तुएं के भीतर। तो जो लोग देख करके आते हैं और वर्णन करते हैं, तो मैं ये कह रहा था केवल सुनने मात्र से लोगों की इच्छा हो जाती है, तो चले देखें। अभी मैं आया भारत से दिल्ली में, जहाँ रुका था रात में, दो व्यक्ति आ रहे हैं अमेरिका, कहे हम भी आएंगे। तो मैं कहा कि अमेरिका किस उद्देश्य से जा रहे हैं, तो सबसे पहले उनके मुख से निकला डिज्नीलैंड देखना। वो राधा जीवन जी के भाई हैं, आनंद पद्दार के भाई, सबसे पहले उनके मुख से यही निकला। मैं कहा मैं तो उसको देखा हूँ, तो देखना बेकार है, कोई फायदा नहीं। नहीं, ये लड़के सब देखना चाहते हैं, जैसे सुने हैं और कुछ देखेंगे, लेकिन वो भी देखेंगे। तो आज उत्सुक विषय है उनके लिए, लेकिन जब एक दिन दृष्ट हो जाएगा। तो प्रहलाद महाराज तो पृथ्वी के डिज्नीलैंड वगैरह की बात छोड़ दीजिए, वो स्वर्ग की भी बात सुनते थे तो कभी निष्प्रिय, कभी उनको इच्छा नहीं हुई कि मैं देखूं भोगूं ये करूं, कभी नहीं। कभी इच्छा नहीं, बल्कि ये उनकी दृष्टि थी अवस्तु दृक, यह वस्तु है ही नहीं, स्वप्न की तरह मिथ्या है, निरुपयोगी है, हमारे लिए उसका कोई उपयोग नहीं, ऐसा वो मानते थे। और दांतेन्द्रिय प्राण शरीर भी सदा, वो सदा ही अपने प्राण इंद्रिय शरीर और बुद्धि पर दांत कंट्रोल रखते थे। मतलब ये जो शरीर कभी गलत जगह पर गया नहीं, वहीं जाना था जहां जाने से कृष्ण भक्ति बढ़, या बुद्धि भी कभी उनकी उनके बाहर नहीं गई। हम लोग तो सोते हैं तो सपना में बुद्धि निकल कर घूमने लगती है। जागृत में ही मन कहाँ चला गया है पता नहीं लगता है ना। हम चाहते हैं भगवान के चरण में लगे, भगवान के रूप लीला आदि का चिंतन करे मन, लेकिन मन भाग गया और पता भी नहीं लगता है कब भाग गया। तो कंट्रोल नहीं है, लेकिन प्रहलाद महाराज का मन कभी ऐसे भाग गया हो कहीं विषय में, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए सदा शब्द का प्रयोग किया जाता है, सदा दांतेन्द्रिय, सदा दांत प्राण, सदा दांत शरीर, सदा दांत भी, दांत का अर्थ है कंट्रोल्ड, सर्वदा शरीर पर कंट्रोल, मन पर कंट्रोल, बुद्धि पर, प्राण पर, इंद्रिय रखते थे। और इस कारण से प्रशांत कामः, उनकी सांसारिक इच्छाएं बिल्कुल समाप्त थी। प्रशांत काम, इंद्रिय तृप्ति की वासना उनके जीवन में नहीं रह गई थी। यद्यपि असुर, वे असुर थे, मतलब असुर वंश में जन्म हुआ था, लेकिन रहितासुर, आसुर भाव से हीन थे। ऐसे जाति में जन्म लिए थे जिनमें केवल विषय भोग ही था, भगवान की भक्ति नामो निशान की नहीं थी असुरों में। तो असुर का अर्थ होता है असु, असु का अर्थ होता है इंद्रियां प्राण, और र का अर्थ होता है राति, लाती दबाती, मतलब जो इंद्रिय तृप्ति में हमेशा लगा रहे उसको असुर कहते हैं, जो हमेशा शरीर पोषने में रहे उसको असुर कहते हैं। तो ऐसे वंश में जन्म लेकर के भी प्रहलाद महाराज में इंद्रिय और शरीर के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी, रहितासुर थे, आसुर भाव से रहित थे, हीन। तो स्थिति थी विषयों के बीच में, असुरों के बीच में। भगवान नरसिंह देव से प्रहलाद महाराज ने विनय में एक बात कह दिया कि प्रभु, मैं तो अपने कर्म के कारण ऐसे लोगों के बीच में डाला गया हूं जहां आपकी भक्ति करना बिल्कुल कठिन है, ऐसा वो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। तो हमको सत्संग दीजिए, हमें साधु संग दीजिए, भक्तों का संग दीजिए, मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूं। और हम रामायण में पढ़ते हैं, रामचरितमानस में, जब विभीषण जी आए भगवान से मिलने के लिए, तो भगवान ने यही सबसे पहले प्रश्न किया उनसे कि खलमंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभ कही भांति। तुम तो हमेशा खलों की मंडली में रहते हो, लंका में केवल निश्चर रहते हो, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवास। हनुमान जी सोच रहे थे जाने तो निशाचरों की बस्ती है, लेकिन घर पर राम नाम लिखा गया है, तुलसी का बिरवा है, राक्षसों के बीच में कोई सज्जन कैसे रह सकता है। हनुमान जी सोचने लगे कोई छल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कोई वैष्णव वेश में वैष्णव कुटिया बना करके हमको धोखा देना चाहता है। तो उसी समय विभीषण जी राम राम कहते हुए भोर में जगे। तब हनुमान जी समझ गए कि ये हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ह, समझ गए कि ये तो कोई वैष्णव है, भक्त है। क्यों? क्योंकि भोर में नाम ले रहे हैं, भोर में क्या कोई दिखावा करेगा। तो मंगला आरती जो है वो भजन की पहचान है। दो पहर को शाम को तो कोई भी आ जाएगा, तो कुछ लोग तो पिकनिक के लिए भी आ जाते हैं, इसमें क्या पहचान होगी कि वैष्णवता है कि नहीं है, है ना। लेकिन रियली कोई भोर में जग करके भगवान के सामने बैठ करके जप कर रहा हो अपने घर में भी कहीं, तो माना जाएगा हाँ ये ठीक, नींद तोड़ करके भगवान की भक्ति कर रहा है। तो हनुमान जी समझ गए कि वैष्णव है, क्योंकि भोर में नाम जप कर रहा है। तो भगवान पूछ रहे हैं विभीषण जी से कि कैसे धर्म का निर्वाह कर लिए उन दुष्टों के बीच में रहकर। विभीषण जी ने हनुमान जी से पहले कहा था कि सुनह पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दस ननी बीच जीव बेचारी। हे पवन सुत जी, मैं कैसे लंका में रह रहा हूँ क्या बताऊं, जैसे 32 दांतों के बीच बेचारी जीव बच कर रहती है, उस तरह से रह रहा हूँ। कहीं सीमा से बाहर गए तो कट से दांतों के बीच कट जाते, इतने सावधान रहने के बाद भी जीव कभी कभी कट जाती है ना। 32 दांत चक्की की तरह लगे हुए हैं और बेचारी दब कर रहती है भीतर, इस तरह से मैं लंका में रह रहा हूँ। प्रहलाद महाराज ने भी भगवान से बातें कही थी, पर यहाँ नारद जी प्रशंसा कर रहे हैं कि असुर है अति रहिता असुर, असुर जन्म में होते हुए असुरों के समाज में रहते हुए भी प्रहलाद महाराज में असुर भाव नहीं था, भगवान की भक्ति से पूर्ण थे। और अब इस तरह से गुणों का वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं कि जस्मिन महद गुणा राजन गृह्यंते गंभीर मुहु नते धुना पिधियंते जथा भगवती स्वर। हे महाराज, प्रहलाद महाराज के कहां तक मैं गुण वर्णन करूं, उनमें जो भी गुण हैं वे आज तक हैं, न अधुना अपि भी अंते, आज भी तिरोहित नहीं हो रहे हैं। जैसे भगवती ईश्वर है, जैसे भगवान कृष्ण में, भगवान कृष्ण में जो गुण है अनादि काल से हैं वो अब तक हैं। जैसे जैसे भगवान सुंदर हैं तो हमेशा सुंदर रहेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ दिन के बाद बूढ़ा हो जाएंगे और सुंदरता चली जाएगी। अगर उन्हें ज्ञान है तो सदा ज्ञान रहेगा, धनी है तो सदा धनी रहेंगे, जो भी भगवान में गुण है वो सदा रहेगा, जाने वाला नहीं है। तो उसी तरह प्रहलाद महाराज में जो गुण है वो जथा भगवती ईश्वर है, जैसे भगवान में गुण है वैसे उनमें गुण है। अब इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। तो जैसे क्षमा दया आदि का जो गुण है भगवान में उस वो नित्य रहता है, उसी तरह प्रहलाद महाराज में। और आज भी बड़े बड़े कवि, मतलब भगवान वेदव्यास देव वगैरह, ये सब प्रहलाद महाराज के गुणों को गृह्यंते, मतलब ग्रहण करते हैं, वर्णन करते रहते हैं, आज तक वे गुण सब विद्यमान है। यम साधु गाथा सदसी रिपो किसुरा नृप प्रतिमान प्रकुरवंती किमतान्य भवादृशा। और नारद जी उस राजस्वीय सभा में कह रहे हैं कि जब कोई सभा लगती, जब सज्जनों की प्रशंसा करने के लिए कभी सभा जुटती है, वही ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कोई बड़े बड़े लोगों की सभा लगे और उसमें वे लोग विचार करें कि पूर्व काल में या आधुनिक समय में कौन लोग सबसे बड़े बड़े हुए हैं इस संसार में, भगवान के बड़े बड़े भक्त और अन्य गुणों से भी भरपूर कौन कौन लोग हैं। तो जब साधुओं का गुण वर्णन करने के लिए सभा लगती है, यहां तक कि देवताओं में भी, जबकि वे देवता रिपव शत्रु हैं दैत्यों के, देवता लोग शत्रु हैं दैत्यों के, लेकिन उनके समाज में भी जब सज्जनों की गिनती की जाती है, भगवान के भक्तों की, तो वे प्रहलाद महाराज को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और प्रतिमानम कुर्वन्ति, प्रतिमान का अर्थ है दृष्टांत, स्टैंडर्ड उनको मानते हैं, कहते हैं कोई महान उसको कैसा होना चाहिए तो प्रहलाद जैसा। इस तरह कसौटी के रूप में प्रहलाद महाराज को रखते हैं, किसी में गुण देखना हो तो मिला करके देखते हैं कि प्रहलाद जैसा है कि नहीं, प्रहलाद जैसा है कि नहीं। रिपव अपनी सूरा और देवता भी जो कि प्रहलाद के शत्रु है, मतलब हिरण्यकश्यप का पुत्र होने के कारण दैत्य के शत्रु है देवता, लेकिन वे देवता शत्रु होकर के भी प्रहलाद महाराज की प्रशंसा करते हैं अपने सभा में। अभी अपने अपने घर में अपनी पत्नी से कोई प्रशंसा करे वो बड़ी बात नहीं, सभा के बीच में खुलकर प्रहलाद महाराज की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा ही नहीं करते, ये कहते हैं कि भक्त हो तो प्रहलाद जैसा होना, साधु हो तो प्रहलाद जैसा, महात्मा या सज्जन पुरुष हो तो ऐसा होना चाहिए। इसको प्रतिमान कहते हैं, प्रतिमानम प्रकुर्वन्ति, ये प्रहलाद का गुण है। भक्तों में वास्तव में प्रहलाद महाराज श्रीमान। एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने कह दिया प्रहलाद महाराज इज द बेस्ट ऑफ ऑल डिवोटीज, ऐसा कुछ कहा, प्रहलाद महाराज बेस्ट है भक्तों। तो वही प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन कर रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज को कह दिए कि और ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल डिवोटीज, वो सभी कृष्ण भक्तों में सबसे श्रेष्ठ। तो एक बार फिर कथा करे तो गोपियों को उन्होंने कहा कि गोपीज आर द बेस्ट। तो किसी भक्त ने प्रश्न किया कि प्रभुपाद जी आप कई बार कथा कहते हैं तो कभी कहते हैं प्रहलाद बेस्ट हैं, कभी युधिष्ठिर बेस्ट हैं और कभी गोपियां बेस्ट हैं। प्रहलाद तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ प्रहलाद महाराज इज द बेस्ट। भक्त ने पूछा कि और युधिष्ठिर महाराज, ही इज द बेस्ट ऑफ बेस्ट, और गोपियां और दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मतलब सब बेस्ट ही है कोई हिट नहीं है जो कुछ भी हो, लेकिन वास्तव में जब भक्तों की गिनती की जाती है, युधिष्ठिर महाराज आदि को छोड़ दीजिए, गोपियों को छोड़ दीजिए, वो लोग तो नित्य परिकर है, उनकी बात अलग है। ऐसे प्रहलाद महाराज भी पार्षद हैं भगवान के, लेकिन फिर भी व्यवहार जगत में जहां कृष्ण उनके सामने नहीं है, सारा समाज विरोधी है, और वहां भक्ति करके इस तरह निभा लेना एक बहुत बड़ी विशेषता है। गोपियों के सामने तो कृष्ण थे अपने मुस्कान से, वेणु गीत से, जैसे तैसे सौंदर्य से उनके चित्त को हरते थे, इसलिए स्वाभाविक उनका मन लग सकता। युधिष्ठिर महाराज उनका आलिंगन करते थे, उनके साथ कृष्ण बैठते थे, इसलिए उनका मन कृष्ण में लगे बिल्कुल स्वाभाविक। लेकिन प्रहलाद महाराज जहां एक भी कथा कहने वाला आदमी नहीं था, जहां कोई भी चित्र नहीं टांग सकता था भगवान का, कुछ भी नहीं, और वहां पर इतना निभा लेना, इस दृष्टि से प्रहलाद महाराज वास्तव में दी बेस्ट, इस दृष्टि से संचय नहीं। इसीलिए देवता लोग अपने समाज में जब साधुओं के गुण गाते हैं, साधु गाथा सदस्य, जब भक्तों का गुण गाने के लिए सभा लगती है देवताओं के यहाँ, तो शत्रु होते हुए भी वे देवता लोग प्रहलाद महाराज को सबसे श्रेष्ठ कहते हैं। नहीं तो निग्लेक्ट कर सकते थे, प्रहलाद का नाम न रख करके नारद जी वगैरह का नाम रखते और लोगों का, लेकिन वे जानते हैं। आप बताइए कि शत्रु भी जिनको सबसे श्रेष्ठ साधु मानते हैं, विषया छोड़कर, तो कितना महान व्यक्ति होगा। और यह कहकर नारद जी कहते हैं बस गुणा ही रलम असंख्य, प्रहलाद महाराज के असंख्य गुण है, कोई गिन करके शेष नहीं कर सकता। लेकिन और गुणों की बात तो छोड़ दीजिए, प्रहलाद महाराज के बहुत बहुत गुणों को कह करके उनके महिमा को सूचित करना तो ठीक है, लेकिन क्या सूचित किया जाए, उनका एक ही गुण ऐसा है जो उनकी महिमा को पर्याप्त सूचित कर रहा है, वह क्या है, वासुदेवे भगवती जस नैसर्गिकी रति, भगवान श्री कृष्ण में, वसुदेव के पुत्र कृष्ण में उनकी नैसर्गिकी रति, नैसर्गिकी का अर्थ होता है स्वाभाविक, स्वाभाविक जो वस्तु होती है उसके वस्तु धर्म में कभी क्षति नहीं होती। जैसे मान लीजिए कस्तूरी है, तो कस्तूरी जहां भी रहेगी सुगंध आएगी उसमें से, जहां उसमें सुगंध बाहर से भरा नहीं जाएगा। जैसे आजकल लोग फूल बना करके उसमें बाहर से छिड़काव करते हैं, कुछ डालते हैं, वो अस्वाभाविक रूप भी अस्वाभाविक रहता है। अस्वाभाविक प्लांट अगर हम लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि छाया में मरता नहीं है, है ना। कई बार भ्रम हो जाता है कि ये स्वाभाविक है कि क्या है। लेकिन जिसकी जैसे अग्नि है, अग्नि में दाह स्वाभाविक है, उसी तरह प्रहलाद महाराज में स्वाभाविक कृष्ण के प्रति अनुराग है, जो कभी कम नहीं होता, ज्यों का त्यों बना रहा। और स्वाभाविक का एक अर्थ यह भी हुआ निसर्ग का, क्योंकि जन्म से ही है। जब प्रहलाद महाराज भक्ति कर रहे थे विद्यालय में, स्कूल में, तो उनके टीचर लोग हार करके उनको लेकर आए हिरण्यकश्यपु के पास, तो कथा आएगी। तो हिरण्यकश्यपु पूछ दिया कि बेटा सुनाओ कुछ अच्छी बात, तो भक्ति की बात सुनाए। और अंत में एक साल के बाद आए फिर, तो वो पूछा कि बेस्ट बात सुनाओ, तो वो कहे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। इस पर वो क्रोधित हो गया। क्रोधित प्रहलाद पर नहीं हुआ, क्रोधित हुआ गुरुपुत्रों पर कि अरे नालायक हो, यही सिखाने के लिए मैं भेजा था, यही सिलेबस है स्कूल में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तुम लोग मुझसे वेतन ले रहे हो और काम विष्णु का कर रहे हो, कृष्ण भावना का प्रचार चालू किए हो। अगलो तो थर थर कांपने लगे गुरु लोग, तलवार उठा लिया मारने के लिए। अब तक तुम लोगों ने मेरा काम नहीं किया है, विष्णु की भक्ति सिखाया है। तो गुरु लोग थर थर कांप रहे थे, वे कह रहे थे राजन न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सरकार हम लोग इसको ये नहीं सिखाए हैं, हम लोग ये कृष्ण भक्ति इसको नहीं सिखाए। तो उसने कहा तो दूसरा कोई सिखाया होगा, तुम लोग क्या पढ़ाते हो, क्या केयर करते हो, कोई स्कूल में आया होगा। तो कहते हैं न पड़ा प्रणीतम, नहीं सरकार हम लोग तो 24 घंटा जगे रहते हैं, कोई दूसरा स्कूल में कोई प्रोग्राम नहीं दिया, कोई नहीं आया, दूसरा भी नहीं सिखाया। तो वो पूछता कैसे ये हरे कृष्ण कर रहा है, तो कहते हैं नैसर्गिकीय मतिरस्य राजन, हे राजन जन्म जात इसकी ये बुद्धि, हम लोग नहीं पढ़ाए हैं। उन लोगों को क्या पता था कि गर्भ से ही वो सीखा हुआ आ गया है। इसकी नैसर्गिकी मति है महाराज, आप क्रोध छोड़िए, हम लोग तो आपके क्रोध से ही मर जाएंगे, अब तलवार रखिए तब शांति मिलेगी। हम लोग नहीं सिखाया। तो बाद में पूछता है प्रहलाद महाराज से तुमको कौन सिखाया, ये लोग तो कह रहे हैं कि हम नहीं सिखाए, तुम कहां से सीखे। प्रहलाद महाराज से विविध उत्तर देते हैं, ये सब कथा बाद में आने वाली है। तो नैसर्गिकी रहती थी और नैसर्गिक निसर्ग मतलब जन्मजात स्वभाव में, तो बचपन से ही वे भक्त थे और पूर्व, यही उनके समस्त गुणों में सबसे महान गुण है। तो उसी रति का वर्णन कर रहे हैं, न्यस्त क्रीड़न कह बालो जडवतन मनस्तया, बाल वे बच्चा थे कभी खेले नहीं, न्यस्त क्रीड़न कह खेल कूद के जो सामान थे वो कभी छुए नहीं, खेलने में नहीं, ये हमेशा भगवान का नाम लेते थे चाहे ध्यान करते थे, खेलने में व्यस्त नहीं हुए। न्यस्त क्रीड़न कह थे कि कोई उनके हाथ में खिलौना धराता भी था, उनकी माँ आदि कोई, तो वो पसंद नहीं था उनको। न्यस्त क्रीड़न बाल बच्चा होते हुए जड़वत तन मनस्तया, और जड़ की तरह बैठे रह जाते थे, भगवान में मन लगा रहता था, भगवान में चित्त का आवेश रहता था, और ऐसे वे रहते थे लगता था जैसे कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा, जैसे कृष्ण ग्रह ने उनको पकड़ लिया। जिस पर ग्रह लग जाता है, भूत लग जाता है, तो वह व्यक्ति कुछ बकता रहता है और नॉर्मल कंडीशन में नहीं रह जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ और ही बात बोलता रहता है, ऐसे ऐसे कभी हंसता है, कभी जाता है, कभी कुछ। तो प्रहलाद महाराज ऐसे बचपन से ही रहते थे। कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा, उनके आत्मा मन मन को कृष्ण ग्रह ने ग्रस लिया था। कृष्ण ग्रह के दो अर्थ, एक तो भगवान कृष्ण ग्रह जैसे पकड़ लिए थे उनको, और दूसरा है काला ग्रह, बहुत खराब ग्रह लग गया था उनको। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दूषित ग्रह से अविष्ट हो जाता है तो न ठीक से खाता है, न पीता है, न सोता है, न समाज में रहता है। इस तरह से प्रहलाद महाराज रहते, अविष्ट रहते थे भगवान कृष्ण में। न वेद जगत ईदृशम, उन्हें जगत का कोई ध्यान नहीं रहता था। आकर्षण की बात तो दूर रही, वो जानते भी नहीं थे जगत में क्या हो रहा है, क्या हो रहा, पास नहीं। और लड़के खेलते थे तो बैठे बैठे कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी शरीर में पुलक छा जाता था, आंखों में आंसू बहने लगते थे, उत्कंठित हो जाते थे। तो ऐसे समाज में बैठे हैं, बैठे तब तक हा कृष्ण हा गोविंद बोलने लगते थे, क्योंकि भीतर लीलाएं स्फुरित होती रहती थी और उसी के अनुसार व्यवहार करते थे। इदम ईदृशम जगत न वेद, जगत का ज्ञान उनको बिल्कुल नहीं हो पाता था। तब बताइए उन लोगों की कृष्ण भावना कैसे बढ़ सकती है जो सामने के जगत का तो ज्ञान रखते ही हैं, न्यूज़पेपर ले लेकर दुनिया भर का ज्ञान रोज सीख रहे हैं, तो अपने दिमाग को स्कैटर्ड कर रहे हैं। मैंने देखा है कई लोगों को इंडिया में अखबार पढ़ते हुए, कभी कभी एक एक घंटे दो दो घंटे पढ़ते रह जाते हैं, तो आधा घंटा भी रोज भागवत पढ़ते तो बेड़ा पार हो जाता है, लेकिन वो पढ़ते नहीं। और भागवत पढ़ने को कहीं तो कहते हैं समय कहाँ है, समय कहाँ, तुमको कचड़ा पढ़ने का समय है लेकिन भागवत पढ़ने का समय नहीं, टीवी देखने का समय है लेकिन मंदिर आने का समय नहीं। ये दशा है लोगों का। वास्तव में इस संसार को भूलने की जरूरत है, नहीं तो हम लोग तो इंद्रियों से इसको ग्रहण कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कर रहे हैं, रोज 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 ये पढ़ो वो पढ़ो ये पढ़ो, चित्त में तो संसार धसता जा रहा है। ये प्रहलाद महाराज तो जानते ही नहीं थे, पास में क्या हो रहा है उसको नहीं जानते थे, शरीर कहाँ बैठा है, क्या खाया, क्या पिया, कैसे नहाया, इसका उन्हें ध्यान नहीं रहता, संसार का कहाँ ध्यान रहे। क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतना, कभी कभी ये भगवान के विरह की अनुभूति करते थे कि भगवान हमें छोड़कर जा रहे हैं, हम नित्य लीला में सखा हैं, कृष्ण हमको छोड़कर जा रहे हैं। तो इस प्रकार की सबल 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 का अर्थ होता है मिश्रित, मिक्स्ड मिक्स्ड चेतना उनकी होती थी, तो अकस्मात रोने लगते थे। आप लोगों ने देखा है ग्रह से अविष्ट व्यक्ति कैसे अकस्मात रोने लगता है, हम देखे हैं कई बार, और कभी कभी अकस्मात हंसने लगता है, तो उसका हंसना और रोना दोनों एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। तो प्रहलाद महाराज क्वचित रुदति जोर से रोने लगते थे कृष्ण के विरह की भावना करते, और क्वचित हंसति, और कभी कभी ऐसे ठठाकर हंसने लगते थे। तो चिंता आह्लाद, भगवान के चिंतन के आह्लाद से, भगवान का चिंतन करके लीला का ध्यान करके इतना आनंद आता था कि हंसने लगते थे। जैसे मान लीजिए ये लीला का ध्यान कर रहे हैं कि श्री कृष्ण माखन की चोरी करके और छिपे कहीं घर में, और सब गोपियां खोज रही नहीं मिल रहे, उसी के घर में चोरी करके और कोने में छिप गए और खोज रहे नहीं मिल रहे, तब तक कृष्ण ने इशारा किया प्रहलाद महाराज को, मतलब सखा के भाव में, कहना मत। तो प्रहलाद महाराज को हंसी आ गई अकस्मात, लेकिन वो हंसी केवल मन में न रहकर के बाहर शरीर में प्रकट हो जाती है। नित्य लीला का चिंतन ऐसा प्रभावशाली होता है। एक कथा है कि एक बार एक भक्त खीर बनाए भगवान को भोग लगाने के लिए, गौरी संप्रदाय की कथा है। खीर बनाए और बहुत गर्म खीर था, तो उन्होंने टच किया कि शायद अब ठंडा हो गया होगा, तो भोग लगा ली, मन में भोग लगा रहे, और खीर को स्पर्श किए तब तक उनकी बाहर की यहां की उंगली चल गई, गर्म था खीर बहुत। और दूसरे भक्तों ने देखा कि ये तो बैठे हैं और इनकी उंगली में थोड़ा पड़ गया, ये प्रभाव होता। तो प्रहलाद महाराज नित्य लीला का चिंतन कर रहे थे तो उसी में भगवान की चोरी आदि का स्मरण करके हंसने लगते थे, उसी में कुछ भी नहीं समझ पाते थे ये क्या हो रहा है इसको। तो क्वचित हंसती तब चिंता हलाद, भगवान के ध्यान के आनंद में हंसने लगते थे। उद्गायती क्वचित, और कभी जोर जोर से गाने लगते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और कुछ भी ध्यान नहीं रहता था कि पास में कौन बैठा है, इसका कोई अनुसंधान नहीं रहता था, भीतर के ध्यान से गाने लगते थे। नदती क्वचित उत्कंठ, कभी जोर से पुकारने लगते थे, उत्कंठ मतलब मुक्त कंठ होकर। और कभी कभी विलज्ज नृत्यते नृत्यति क्वचित, विलज्जो नृत्यति क्वचित, बैठे हैं तब तक लाज छोड़ करके और नाचने लगते थे। ध्यान आता था कि कृष्ण की रासलीला चल रही है तो हम भी नाचना चालू करें, या सखाओं के साथ कृष्ण नाच रहे हैं तो हम भी नाचने लगे। तो उधर तो ध्यान चलता था भीतर, लेकिन शरीर पर उसका प्रभाव आ जाता था, तो लाज छोड़कर नृत्यति क्वचित कभी कभी नाचने लगते थे। क्वचित तद भावना युक्त स्तन मयोनुचकार, और कभी कभी ऐसी भावना होती थी कि मैं ही कृष्ण, ये प्रेम में ऐसी प्रकार भावना होती है तो अनुचकार हो, वे कृष्ण का अनुकरण करने लगते थे। कभी कभी ऐसे उंगली करके और खड़े रहते थे, बांसुरी बजाते हैं कि मैं गोवर्धन धारण किया हूं, इस प्रकार की भावना। यह अभेद उपासना नहीं है, भगवान की लीलाओं का चिंतन करके ऐसी भावना होती है कि मैं कृष्ण हूं। तो इस तरह से कृष्ण जो जो लीला किए हैं उसका अनुकरण करते, कभी भय से भागना, कभी बंसी बजाना, कभी कुछ करना, ऐसे कालिए के फण पर नृत्य करना। तो प्रहलाद महाराज उसका अनुकरण करने लगते थे, जानबूझकर, लोग को दिखाने के लिए नहीं, मन में वो लीला का रील चल रहा है, अब जैसे चल रहा है वैसे वैसे शरीर की दशा होती थी। क्वचित उत्पुलकस्त श्रीनास्ते संस्पर्श निर्वृत्त, और कभी कभी भावना होती थी कि भगवान को मैं आलिंगन किए हुए हूं और इसके कारण उनके शरीर में पूरा आनंद के आनंद से पुलक छा जाता था, रोए खड़े हो जाते थे। और स्थिर प्रेम के कारण ऐसा आनंद उत्पन्न होता था, उसके कारण आंखों में आनंद के आंसू भर जाते थे, आंखें बंद रहती थी लेकिन आंसू फिर भी टप टप टपकते थे। कभी भी ये सब दशा इनकी होती रहती थी। सावुत्तम श्लोक पदार बिंदयो निषेवया किंचन संग लब्धया, अकिंचन संग लब्धया, अकिंचन मतलब विरक्त या अनन्य प्रेमी, भगवत प्रेमी के संग से जो भक्ति प्राप्त हुई थी, उत्तम श्लोक के चरणारविंद की निसेवा भक्ति प्राप्त हुई थी, उस भक्ति के प्रभाव से आत्मनः निवृत्तिम तमन, प्रहलाद महाराज स्वयं ही परम आनंद में डूब जाते थे। और यहां तक कि इनको जो देखता था, इनकी बात सुनता था, तो दुःसंग दीना से मना समान देना, संसारिक आसक्ति के कारण जिसका मन अतिशय दुखी हो गया है, वह व्यक्ति भी इनकी बात सुनकर और इनको देख करके सुखी हो जाता है, उसका दुख दूर हो जाता है। दुःसंग दीनस्य मनः समन्वयः, आत्मनः पराम निर्वृत्ति, अपने तो परम सुख में डूबे ही रहते थे, इनको देखने वाला, इनकी बात सुनने वाला दूसरा व्यक्ति भी आनंद में डूब जाता था, उसके मन में शांति मिलती थी। ये प्रहलाद महाराज का प्रभाव था, स्वयं आनंद में।